हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। पार्थ ने गुस्से में एक हाथ से रूही की गर्दन पकड़ते हुए दांत पीसकर कहा, बस चुप हो जाओ, मेरे पापा के बारे में अगर एक और शब्द कहा तो मैं अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूंगा, और इसके लिए मुझे उनके ऑर्डर्स भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस बेरहमी से पार्थ ने रूही की गर्दन पकड़ी थी, रूही की आंखें बाहर निकलने को हो गई थीं और तुरंत ही उसकी आंखों में पानी भी भर आया था। वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी और उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। अपने छोटे छोटे हाथों को पार्थ के हाथ पर रखकर वो उसके हाथ को अपनी गर्दन से हटाना चाहती थी, लेकिन पार्थ की ताकत के आगे उसके नाजुक हाथ कुछ नहीं कर सकते थे। पार्थ की पकड़ रूही की गर्दन पर बढ़ते बल के साथ मजबूत होती जा रही थी, जिससे रूही का छोटा सा चेहरा लाल हो चुका था। वो छटपटाते हुए कुछ बोलना चाहती थी, पर उसके मुंह से निकलती आवाज़ों का मतलब समझ पाना मुश्किल था। पार्थ के हाथ पर जो कुछ गीलापन महसूस हुआ तो उसने नज़रें उठाकर रूही की आंखों में देखा, जिसकी आंखों से अब लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं और आंखों के कोए ऐसे थे जैसे किसी भी पल वो नीचे गिर जाएंगे। पार्थ ने आखिर में गुस्से से धक्का देते हुए उसकी गर्दन को छोड़ दिया। इसके साथ ही रूही फर्श पर जा गिरी और वहां गिरते ही वो हांफते हुए सांस बटोरने की कोशिश करने लगी। गिरने की वजह से भी उसके घुटनों और हाथ पैरों में दर्द होने लगा था। उसकी आंखों से आंसू निकलकर अब फर्श को भिगो रहे थे। करीब 5 मिनट तक हांफने के बाद उसे सामान्य सांस आई और उसने डरते हुए पार्थ की तरफ देखा, जो अब भी किसी घायल शेर की तरह बेड पर बैठे हुए गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। वहीं रूही अपनी बातों को याद करके बस ये समझना चाहती थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी, उसने क्या गलत कहा था, क्योंकि उसके अनुसार उसने जो बोला वो बिल्कुल सही था और उस पर किसी को गुस्सा कैसे आ सकता है। पार्थ को तो सोचना चाहिए था कि क्या सच में उसके पापा ने उसे गलत सीख दी है, क्योंकि ये तो छोटे से बच्चे को भी समझ आ जाता है कि किसी को किडनैप करना अच्छा काम है या बुरा काम है। रूही की सोच कुछ ऐसी ही थी। उसे लगता था हर इंसान हमें कुछ अच्छा ही सिखाना चाहता है, इसीलिए वो भी सबसे अच्छे से पेश आती है, और उसका एक उदाहरण था कि वो अपने किडनैपर से भी कितने अच्छे से पेश आ रही थी और उसे भी सही गलत का फ़र्क समझाने चली थी। कहीं ना कहीं ये उसकी बेवकूफ़ी थी, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं क्यों पार्थ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे याद था सुबह कैसे पार्थ ने एक इंसान को जान से मार दिया था जब उसने उसे बुरी नज़रों से देखा था, तो फिर अब वो ऐसे कैसे गुस्सा हो सकता है। वहीं पार्थ से जब उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो वो बेड से उठा और फिर रूही के पास आकर इस बार एक हाथ से उसके बाल पकड़ते हुए उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने करता हुआ बोला, खबरदार जो मेरे पापा के बारे में आइंदा कुछ कहा, या फिर मेरी फैमिली के बारे में भी। जितना मैं तुमसे कहूँ सिर्फ उतना ही बोलना है तुम्हें, उससे ज़्यादा नहीं। आज मैं तुम्हारी जान ले लेता अगर मेरे पापा ने ये ना कहा होता कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है हमारे दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए। आइंदा से अपनी ज़ुबान पर काबू रखना। इतना बोलकर पार्थ ने एक झटके से उसके बालों को छोड़ा और फिर उठते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। पार्थ के जाने के बाद रूही वैसे की वैसे फर्श पर बैठी रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, यहां तक कि अब तो आंसू पहुंचते पहुंचते उसे अपने गालों पर भी जलन महसूस होने लगी थी, क्योंकि वो ज्यादा बार आंसू पहुंचने से हल्के छिलने लगे थे, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थी। रूही ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा, जो अब अपने आप ही बंद हो गया था। पार्थ ने उस दरवाजे को ऑटोमेटिक बना रखा था, वो कहीं से भी उस दरवाजे को बंद कर सकता था और खोल भी सकता था। उसका रिमोट हमेशा उसी के पास रहता था। रूही को अब सच में पार्थ से डर लग रहा था। अब तक तो वो सोच रही थी शायद पार्थ को कोई गलतफहमी है, जिस वजह से वो उसे किडनैप करके ले आया है और वो उसे छोड़ भी देगा, लेकिन अब उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो चुकी थी। अब उसे ये कैद बुरी तरह डरा रही थी। उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी यहाँ। रूही ने रोते हुए घुटनों में अपना चेहरा छुपा लिया। उसके सिसकने की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। वहीं पार्थ वहां से दूसरे कमरे में जाकर अब जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि अभी तक उसे एलर्जी रिएक्शन क्यों नहीं हुए हैं, क्योंकि जब भी वो किसी लड़की को ऐसे छूता है उसके शरीर पर रेड रैशेज आ जाते हैं। पता नहीं क्यों पर उसे अजीब सी घृणा महसूस होती है। वो उसे रूही से नहीं महसूस हुई, लेकिन उसके बावजूद उसका वहम था कि उसे जरूर थोड़ी ही देर में एलर्जी हो जाएगी और वो फिर बहुत गंदा दिखने लगेगा, इसीलिए वो रूही के सामने ज्यादा देर तक रुक नहीं पाया था। उसने शर्ट निकालकर बेड पर फेंकी और फिर जल्दी जल्दी अपनी पैंट का बेल्ट उतारने लगा। सामने ही बड़ा सा मिरर लगा था जिसमें वो खुद की बॉडी को देख रहा था, लेकिन 5 मिनट बीतने के बाद भी जब उसकी बॉडी पर कोई रैशेज नहीं आए तो उसकी आंखों में हैरानी आ गई। उसने खुद से कहा, क्या मुझे सिया से इस बारे में बात करनी चाहिए।
लेकिन उसे पता था उसने अभी अभी सिया को बाहर भेजा है। वो जरूर उससे नाराज भी हो गई होगी और अब वो सुबह तक उसे फिर से डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उसने अपने सीने पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली और फिर तेज कदमों से बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाने के बाद वो आधे घंटे तक कोल्ड शावर के नीचे खड़ा रहा। आंखें बंद करने के बाद भी बार बार उसकी आंखों के सामने रूही का चेहरा ही घूम रहा था। कभी उसके फड़फड़ाते होंठ, तो कभी उसकी भीगी हुई आंखें, कभी उसका गुस्सा, तो कभी उसकी वो प्यारी सी हंसी। उसे इस बात पर भी अफसोस हो रहा था कि वो लड़की इतना सब कुछ होने के बावजूद उससे डर नहीं रही है। तो फिर उसका माफिया होने का क्या फायदा? क्या वो इतना डरावना भी नहीं दिखता कि एक बच्चे को डरा सके? उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बनाते हुए वॉल पर एक मुक्का दे मारा और फिर दांत पीसते हुए बोला, वो लड़की किडनैप होने के बावजूद स्माइल कैसे कर सकती है? रूही का उसके कमरे को देखकर उत्साहित होना पार्थ को बहुत अजीब महसूस करवा रहा था। वो तो चाहता था रूही उसे अपने करीब देखकर डर जाए और फिर से ठीक पहले दिन की तरह उसे छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो उसे सही गलत में फर्क समझाने लगी थी, जैसे पता नहीं उसे उसकी कितनी फिक्र हो। पार्थ किसी भी चीज को बर्दाश्त कर सकता है सिवाय उसकी झूठी फिक्र को। उसे लगता है जब तक लोगों को उससे कोई मतलब ना हो, कोई उसकी फिक्र नहीं कर सकता है। तो रूही तो उसकी दुश्मन थी। उसने रूही को कितना हर्ट कर दिया था, इसके बावजूद वो उसकी फिक्र कर रही थी। इसका मतलब था कि उसकी वो फिक्र बिल्कुल झूठी थी, वो एक दिखावा था और पार्थ को दिखावे से सख्त नफरत है।
पार्थ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था रूही का चेहरा, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अब लगातार दीवार पर मुक्के मारने लगा। उसने इस बार किसी घायल शेर की तरह गुर्राते हुए कहा, तुम्हें मुझसे डरना होगा बटरफ्लाई। फिर वो बाथरूम से अपना वाइट कलर का बाथरूम पहनकर बाहर आया और फिर अपना फोन उठाकर जल्दी से किसी को कॉल किया। सामने से एक आदमी की आवाज आई, जिसे सुनकर पार्थ ने अपनी गहरी आवाज में कहा, सारे नौकरों की छुट्टी कर दो और बंगला सुबह तक मुझे खाली चाहिए, यहां कोई नहीं रहेगा, और बाहर बॉडीगार्ड एक्स्ट्रा कर दो। ये काम होने के बाद मुझे मैसेज कर देना। इसके बाद पार्थ ने कॉल कट कर दिया और फिर अपने फोन को बेड पर फेंकते हुए बोला, मैं भी देखता हूं बटरफ्लाई, तुम्हारी अकड़ कब तक रहती है? कब तक तुम यहां रहकर स्माइल कर सकती हो? तुम्हें एक न एक दिन तो मुझसे डरना होगा और मेरे सामने गिड़गिड़ाना होगा कि मुझे छोड़ दो, और उसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।